ठीक है, यहाँ आपके लिए एक सवाल है। अगर किसी कारण से आप सिर्फ एलन मस्क जैसे अरबपति की कुल संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने काल्पनिक पैसे को खर्च करने का बेहतर तरीका क्या होगा? $1,00,000 का साइबर ट्रक खरीदना या $1,00,000 मूल्य के टेस्ला शेयर खरीदना? 1980 के दशक में अमेरिका में गैर बैंक वित्तीय संस्थान जैसे हेज फंड, फैमिली ऑफिस और प्राइवेट इक्विटी फर्म सामूहिक रूप से जीडीपी के लगभग 40% मूल्य की संपत्ति के मालिक थे। उस समय के लिए भी इससे उन्हें अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक अधिकार मिल गया था, और यह कानून निर्माताओं के लिए एक निरंतर चिंता का विषय था, जो सवाल करते थे कि वास्तव में शो कौन चला रहा है। आज वही संस्थान जीडीपी के 200% मूल्य की संपत्ति को नियंत्रित करते हैं और बढ़ रहे हैं। आधिकारिक बैंकिंग क्षेत्र को जोड़ें और ये 300% से अधिक है, हालांकि वे वास्तव में पीछे रह रहे हैं, जिसके कारण हम जल्द ही जानेंगे। अकेले अमेरिका में ही घरेलू वित्तीय संपत्ति अब $145 ट्रिलियन की है, जो 2024 में जीडीपी का लगभग 500% थी। सैद्धांतिक रूप से एक कुशल अर्थव्यवस्था में वित्तीय उद्योग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह व्यवसाय के विकास और तरलता को सक्षम बनाता है। ये लोगों को बड़ी खरीदारी करने की सुविधा देता है, जिसे वे मौके पर वहन नहीं कर सकते थे। ये जोखिम का प्रबंधन करता है, और यह अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए अतिरिक्त बचत करने वाले लोगों को रिटर्न कमाने का एक तरीका देता है। लेकिन अगर वित्त उद्योग बहुत बड़ा हो जाता है, तो लोग अब इसका उपयोग अपने व्यवसायों, घर खरीदने या सेवानिवृत्ति बचत के वित्त पोषण के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं करेंगे। इसके बजाय वे अपने व्यवसायों, घर खरीदने और सेवानिवृत्ति बचत का उपयोग वित्तीय उद्योग की सेवा के लिए एक उपकरण के रूप में करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हम पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं?
आपके ऊपर कितना कर्ज है?
लगभग $10,000 का कर्ज।
मेरे छात्र ऋण के लिए $11,000, और फिर अभी मेरे क्रेडिट कार्ड पर $200 है। $1 ट्रिलियन का लाभ, सही है, अथाह बड़ी बात है। पिछले दशक के बारे में सोचे तो ये सब तकनीक के बारे में ही रहा है।
एलन मस्क, जिन्होंने 2022 में ट्विटर को वापस खरीदा और अगले साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर एक्स कर दिया, ने खुलासा किया कि उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एक्स एआई ने एक आकर्षक ऑल स्टॉक डील में ब्रांड का अधिग्रहण किया है। तो वित्तीय उद्योग काफी बढ़ गया है, लेकिन क्या यह एक समस्या है? किसी भी उद्योग का लक्ष्य बढ़ना और ज्यादा पैसा कमाना होता है, तो यह वास्तव में तभी एक समस्या है जब यह विकास बाकी सभी की कीमत पर हुआ हो। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। समस्या यह है कि वित्तीय उद्योग न केवल बढ़ा है, बल्कि इसमें काफी बदलाव भी आया है। हेज फंड, क्वांट फर्म, प्राइवेट इक्विटी, डिस्ट्रेस डेट, हाई फ्रीक्वेंसी मार्केट मेकअप, सेकेंडरी फंड, स्ट्रक्चर ट्रेडेड, अभी खरीदे बाद में भुगतान करें, स्पैक्स, P2P लेंडिंग और कैप फंड जैसे संस्थानों ने पिछले 20 सालों में ही अपने अपने अरबों डॉलर के बाजार बना लिए हैं, जबकि 30 साल पहले इनमें से ज्यादातर का अस्तित्व भी नहीं था। इनमें से कुछ काम पहले पारंपरिक बैंकों द्वारा ही संभाले जाते थे, लेकिन समय के साथ फाइनेंसरों को एहसास हुआ कि वे खुद से बाहर जाकर और अपनी खुद की फर्म शुरू करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, जो बैंक चलाने के नियमों के बिना ज्यादा जोखिम ले सकती हैं। आज पुराने बैंक पूरे वित्तीय उद्योग का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के आसपास उभरी अजीब और अद्भुत फर्म भी शामिल नहीं है, लेकिन उनका खेल वही है, पैसे को और पैसे में बदलने की उम्मीद में इधर उधर करना। यह एक ऐसा खेल है जिसमें वे वाकई अच्छे हैं। हालांकि तकनीकी कंपनियां अपने रिकॉर्ड वैल्यूएशन के लिए सारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं, लेकिन वित्त वास्तव में पैसा बना रहा है। 2024 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कुल मुनाफे का रिकॉर्ड 21% वित्तीय उद्योग द्वारा बनाया गया था, और यकीनन बड़ी तकनीकी कंपनियों को अधिक ध्यान देने का एकमात्र कारण वित्तीय इंजीनियरिंग है। वित्त के खेल में बहुत अधिक व्यवसाय हैं, लेकिन कई अन्य संस्थान भी हैं जो वित्तीय फर्मों की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पैसा वही है। उदाहरण के लिए अधिकांश सार्वजनिक निगमों ने धीरे धीरे खुद को छोटे बैंकों में बदल लिया है। पिछले 40 वर्षों से प्रतिस्पर्धात्मक कॉर्पोरेट मेटा कंपनियों से उनके स्वयं के शेयर वापस खरीदने के लिए रहा है। ये अकल्पनीय रूप से नामित शेयर बायबैक वास्तविक कंपनी से कंपनी के स्टॉक की कृत्रिम मांग पैदा करके और प्रचलन में शेयरों की आपूर्ति को सीमित करके काम करते हैं। अधिक मांग और कम आपूर्ति से कीमतें बढ़ती हैं। काफी सरल है, लेकिन एक कंपनी अपने स्वयं के स्टॉक खरीदती है, जिससे प्रति शेयर आय जैसे वित्तीय संकेतक भी बेहतर दिखते हैं। बेहतर बिक्री नए उत्पादों या लागत में कटौती के माध्यम से आय में वृद्धि करके नहीं, बल्कि केवल शेयरों की संख्या कम करके। शेयर बायबैक मौजूदा निवेशकों के लिए बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने तुरंत स्टॉक मूल्य में वृद्धि देखी है, और कॉर्पोरेट अधिकारियों का वेतन अल्पकालिक बाजार मूल्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन वित्तीय लाभों ने वास्तविक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए एक उपकरण के रूप में वित्त की भूमिका पर कुछ संदेह पैदा किए हैं। जब कंपनियां अपने स्वयं के शेयरों को वापस खरीदने में अपना सारा पैसा खर्च करती हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास बाजार में अपने उत्पाद की पेशकश को बेहतर बनाने के लिए, अनुसंधान और विकास पर खर्च करने के लिए कम पैसे हैं, और इससे भी बदतर हो जाता है। कंपनियां स्टॉक बायबैक करने के लिए बड़ी रकम उधार लेकर अपने पास मौजूद पैसे खर्च कर रही हैं। उस समय ये व्यवसाय प्रभावी रूप से लीवरेज्ड बायआउट फंड होते हैं जो केवल एक ही स्टॉक में निवेश करते हैं अपने ही। ये वास्तव में एक लंबी अवधि की व्यावसायिक योजना नहीं है। इस प्रणाली का ये भी अर्थ है कि नई फर्मों के लिए बाजार में प्रवेश करने के लिए कम पूंजी उपलब्ध है। अब निजी व्यवसाय वही करने जा रहे हैं जो उन्हें करने की अनुमति है। लेकिन अगर आप किसी अर्थशास्त्री से पूछें कि वित्तीय उद्योग को क्या करना चाहिए, तो वे आपको एक किसान के बारे में कोई किस्सा सुनाएंगे जो भोजन उगाना चाहता है लेकिन उसके पास जमीन और बीज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसलिए किसान बैंक से पैसे उधार लेता है और फिर अपनी फसल से होने वाले मुनाफे से उसे चुका देता है और हर कोई जीतता है। किसान अपना व्यवसाय शुरू कर पाता है, बैंक को ब्याज मिलता है और अर्थव्यवस्था को अधिक भोजन मिलता है। लेकिन ये केवल कहानी है। असल में हो क्या रहा है कि मौजूदा फार्म नए उपकरण खरीदने या नई फसलों में निवेश करने के बजाय अपने शेयरधारकों से स्टॉक वापस खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि अच्छे वित्तीय परिणाम प्राप्त करना वास्तविक भोजन के उत्पादन से अधिक लाभदायक है। दूसरे शब्दों में, वित्त उद्योग के पैमाने ने वास्तव में नवाचार को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित किया है। लेकिन अगर वित्तीय उद्योग वित्त पोषण में बदल गया है, तो इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे सभी तकनीकी सफलताओं का भुगतान कौन कर रहा है? आंकड़ों के अनुसार आप कर रहे हैं। वर्ष 2000 के बाद से OECD देशों में व्यवसायों को सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर सब्सिडी, अनुसंधान अनुदान और अन्य सरकारी भुगतानों का पैमाना 4 गुना से अधिक हो गया है। आप शायद पहले से ही SpaceX, हथियार डेवलपर्स और एव निर्माताओं जैसे हाई प्रोफाइल उदाहरणों के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन व्यवसायों को खुद में निवेश करने के लिए विभिन्न क्रेडिट से भरी एक पुस्तिका है। इनमें से कुछ प्रोत्साहनों को विडंबना के संकेत के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जैसे कोयला अन्वेषण के लिए कर क्रेडिट, कम उत्सर्जन ऊर्जा निवेश और कार्बन पृथक्करण के लिए कर क्रेडिट के समान खंड में सूचीबद्ध है। अब निष्पक्षता के हित में मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान में काफी गिरावट आई है। साथ ही विचार यह है कि करदाताओं के पैसे को सीधे अनुसंधान पर खर्च करने के बजाय वे निजी क्षेत्र को करदाताओं द्वारा वित्त पोषित कुछ प्रोत्साहनों के साथ उनके लिए ये करने का अवसर दे रहे हैं। इससे समस्या यह उत्पन्न होती है कि जब सरकार ने अतीत में कोई अनुसंधान खोज की तो कोई भी उसका व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता था, इसलिए नई तकनीकों का लाभ सभी को तुरंत मिल जाता था। लेकिन जब कोई निजी कंपनी कोई खोज करती है, भले ही उसे उधार कर प्रोत्साहनों द्वारा वित्त पोषित किया गया हो, तो वे उस बौद्धिक संपदा के स्वामी होते हैं, इसलिए केवल वे ही उससे लाभ उठा सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी के CEO हैं, तो इससे आपके लिए रणनीतिक योजना बनाना बहुत आसान हो गया है। व्यवसाय अपनी सब्सिडी को अधिकतम करने के लिए नवाचार में जितना संभव हो उतना निवेश करेंगे और बाकी सब कुछ वित्तीय इंजीनियरिंग के लिए आरक्षित है। ओह, और एक और बात, वे निवेश करने का तरीका भी बदल गए हैं। सैंड हिल रोड कैलिफोर्निया में पालो ऑल्टो, मेनलो पार्क और वुडसाइड से होकर गुजरने वाला 5.66 मीटर का एक मुख्य मार्ग है। ये सड़क सेक्वोया कैपिटल A16Z, मेन्यो वेंचर्स और ब्लैकस्टोन के कैलिफोर्निया मुख्यालय के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी वेंचर कैपिटल फर्म है जिन्होंने नए व्यवसायों को शुरुआती चरण में वित्त प्रदान करने की भूमिका संभाली है। इन वित्तीय संस्थानों से निकलने वाले धन की मात्रा ने इस सड़क को पश्चिम की वॉल स्ट्रीट का उपनाम दिया है। लेकिन बढ़ते वित्तीय उद्योग में उनके प्रभुत्व ने व्यवसायों के संचालन के तरीके को भी बदल दिया है। आज ये कंपनियां आई वाली किसी भी चीज पर अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। 10 साल पहले वे क्रिप्टो के साथ ऐसा ही कर रहे थे, उससे एक दशक पहले ये यूजर नेटवर्क था और उससे एक दशक पहले यह A.com नाम वाली किसी भी चीज पर था। ये फर्म जरूरी नहीं मानती है कि ये निवेश करने के लिए सबसे आशाजनक व्यवसाय है। वे बस जानते हैं कि वित्तीय बाजारों में उन्हें उतारना सबसे आसान होगा। अगर बाजार अगले रुझान के लिए काफी उत्सुक है, तो उद्यम पूंजीपति अपने शुरुआती निवेश को व्यवसाय के लाभ में आने से पहले ही बेच सकते हैं, कभी कभी इससे पहले कि वे कोई राजस्व कमाएं या यहां तक कि एक कार्यशील उत्पाद भी न बना लें। इससे मौजूदा बाजार सहभागियों को नुकसान होता है जिन्हें व्यापार के सामान्य नियमों का पालन न करने वाले व्यवसायों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, पिछले हफ्ते के अंत में वेंचर समर्थित आई स्टार्टअप प्लेक्सिटी ने गूगल से क्रोम वेब ब्राउजर को $34.5 बिलियन में खरीदने की पेशकश की। प्लेक्सिटी ने 2.5 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से केवल $1 बिलियन की फंडिंग जुटाई है और आज रॉयटर्स के अनुसार इसकी कीमत $14 बिलियन है। लेकिन इस सौदे को मजाक के तौर पर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वेंचर कैपिटल फर्मों के पास इतना पैसा है कि सही कनेक्शन वाली आई कंपनी इसे आसानी से कर सकती है। अब अगर आपको लगता है कि यह बेवकूफी है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह है। सामान्य बाजारों को इस तरह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वित्तीय पूंजी के एक अंतहीन पूल ने इस तरह के खेल को संभव बना दिया है। बड़ी कंपनियों के लिए इस शुरुआती वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास ने उनके R&D को वास्तव में आसान बना दिया है। उन्हें खुद जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस किसी भी व्यवसाय को खरीदने के लिए तैयार रहने की जरूरत है जो उनके मनचाहे नवाचार करता है। ऐसा करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किए गए ऋण पर ब्याज भी घटाया जा सकता है, तो कई फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए टैक्स देने की तुलना ब्याज देना ज्यादा समझदारी भरा है। बिजनेस को आखिरकार बाजार में कोई उत्पाद या सेवा देनी ही होती है, लेकिन आधुनिक बाजार में एक बिजनेस प्लान प्रभावी रूप से एक मार्केटिंग कैंपेन में बदल गया है, जहां वे वास्तव में अपने स्टॉक को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो की शुरुआत से अपने $1,00,000 को कहां निवेश करें, तो यहां ब्रेकडाउन है। कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार टेस्ला के शेयर वर्तमान में कंपनी की एक साल की कमाई से 196 गुना अधिक मूल्य के हैं। मस्क के पास शायद सबसे अच्छी हेल्थ केयर और जीवन रक्षक तकनीक हो, लेकिन वह और उनकी कंपनी उस कमाई को इकट्ठा करने के लिए 196 साल और नहीं रह सकते। इसलिए जब तक उन्हें इच्छुक निवेशक मिलते रहते हैं, उनके लिए अपने शेयर बेचना ज्यादा समझदारी भरा है। उनके फाइनेंस और पर्यावरण क्रेडिट के हिसाब से $1,00,000 का साइबर ट्रक कंपनी के लिए केवल $4,000 बनाता है, लेकिन $4,000 को $196 से गुना करने पर स्टॉक की कीमत में लगभग $800,000 की वृद्धि होनी चाहिए। काश ऐसा ही होता। टेस्ला इसका सबसे पारदर्शी उदाहरण है, लेकिन बहुत सी उच्च मूल्य वाली कंपनियों के स्टॉक मूल्य के साथ उनके वित्तीय प्रदर्शन का बहुत ही कम संबंध होता है। मस्क ने हाल ही में कंपनी के परिचालन इतिहास में अब तक हुए सभी मुनाफों से ज्यादा का वेतन पैकेट हासिल किया है, जिससे ये साबित होता है कि यह कभी भी कार बेचने की उनकी क्षमता के बारे में नहीं था। ये शेयरधारकों को कार बेचने के विचार को बेचने की उनकी क्षमता के बारे में था। ठीक है, तो हो सकता है कि वित्तीय उद्योग इतना बड़ा हो गया हो कि यह धीरे धीरे पूंजीवाद के व्यवसायों को पुरस्कृत करने के शुद्ध इरादों को भ्रष्ट कर रहा हो, लेकिन सभी वित्त केवल निवेश के बारे में नहीं है, ये जोखिम प्रबंधन के बारे में भी है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार वैश्विक डेरिवेटिव बाजार अब 600 बिलियन से $1 क्वाड्रिलियन के बीच है। हम वास्तव में निश्चित रूप से नहीं जानते, क्योंकि इनमें से अधिकांश सेवाएं ओवर द काउंटर प्रदान की जाती हैं, जिसका वास्तव में मतलब निजी समझौतों में बंद दरवाजों के पीछे है। डेरिवेटिव बीमा अनुबंधों की तरह होते हैं, जो व्यापारों को प्रतिकूल मूल्य परिवर्तनों से बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापार ब्राजील से चीन सोयाबीन भेज रहा है, तो उस यात्रा में लगभग 2 सप्ताह लगेंगे, और उस समय में वैश्विक बाजारों में उन बीन्स की कीमत बदल सकती है। इसलिए व्यापार एक विकल्प अनुबंध में प्रवेश कर सकते हैं, जहां वे अपने सोयाबीन को एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर एक प्रतिपक्षी को बेचने के अधिकार के लिए एक छोटा कमीशन देते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें सोयाबीन बाजार में गिरावट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक गारंटीकृत खरीदार है। खैर, यह ऐसे ही काम करना चाहिए, लेकिन ये वित्तीय उत्पाद वास्तव में सोयाबीन बाजार के ढहने या ब्याज दरों के बढ़ने या आपकी कार के चोरी होने की संभावना को नहीं बदलते हैं। बीमा और डेरिवेटिव अनुबंध केवल उस जोखिम को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरित करते हैं। इस बाजार का मूल्य वैश्विक GDP से 6 से 10 गुना अधिक होने का कारण यह है कि यह घटनाओं के परिणामों पर जुआ खेलने का एक बहुत ही कुशल तरीका बन गया है, और इस तरह ये सब आप पर प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत लोग भी पहले से कहीं अधिक वित्तीय रूप से सक्षम हो गए हैं। इस समय आपके ऊपर कई तरह के कर्ज हो सकते हैं, शायद जितना आप जानते भी नहीं है उससे भी ज्यादा। क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, अभी खरीदें और बाद में चुकाएं लोन, एडवांस सैलरी, सेल फोन प्लान, और अगर आप खुशकिस्मत हैं तो शायद गिरवी भी। स्थिर वेतन उपभोक्ता केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक समस्या रही है, जो लोगों के पैसे खर्च करके विकास करने पर निर्भर करती है। अगर लोग पर्याप्त पैसा नहीं कमाते हैं, तो वे पर्याप्त पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वित्त इस अंतर को भरने के लिए आ गया है और अंतर का लाभ उठा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग तनख्वाह के भरोसे नहीं जी रहे हैं, वे भी वित्तीय संस्थानों और उनके ऋण देने के तौर तरीकों से प्रभावित होते हैं। उपभोक्ता वित्त के सर्वेक्षण के अनुसार मध्यम वर्ग के परिवारों के पास सबसे बड़ी संपत्ति वह घर है जिसमें वे रहते हैं। शीर्ष 10% के पास लगभग सभी स्टॉक हैं, लेकिन परिवार जितना गरीब होता है, उनकी संपत्ति उतनी ही अधिक रियल एस्टेट में बंधी होती है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घर खरीदना स्टॉक पोर्टफोलियो खरीदने की तुलना में बहुत आसान होता है। उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए ऋण के कारण घरों की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि लोगों की आय स्थिर बनी हुई है। इसका मतलब है कि हम अपनी अधिकांश संपत्ति घर में ही निवेश कर देते हैं और अपने कामकाजी जीवन का अधिकांश समय उसे चुकाने में ही बिता देते हैं। अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र 20% मुनाफा कमाता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं कमाता है। वित्तीय क्षेत्र व्यापार के इंजन को चलाने में मदद करता है, लेकिन अगर आपके इंजन का 20% हिस्सा केवल इंजन में तेल भरने में ही खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम खराब है। अगर आपको एक और उदाहरण चाहिए तो इस वीडियो को देखें और जानें कि कुछ देश अपने पूरे आर्थिक उत्पादन का 3 गुना तक अमेरिका में निवेश क्यों कर रहे हैं और वे ऐसा अभी क्यों कर रहे हैं।